أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یورپ کے تین ہفتے کے دورے پر جانے سے قبل جو سلسلہ خطبات کا چل رہا تھا اس میں یہ مضمون بیان ہو رہا تھا کہ تبتل کے کیا معنی ہیں, دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف جانے کا کیا مطلب ہے, اور میں سمجھا رہا تھا کہ سب دنیا سے کٹ جانا تبتل کا معنی نہیں بلکہ جھوٹے خداؤں سے تعلق توڑ لینا تبتل کا حقیقی معنی ہے, اور یہ جھوٹے خدا انسان کے نفس کے اندر بستے ہیں. انسان کا نفس ہی بت تراش ہے, اور سب سے زیادہ شرک انسان کی ذات میں ہوتا ہے. ان تمام مخفی بتوں کو توڑنا خدا تعالیٰ کی طرف حرکت کرنے کے لیے ایک لازمہ ہے, ورنہ کسی نہ کسی بت سے انسان کی گردن پر کسی نہ کسی بت کا پھندا پڑا رہے گا, اور ایک بت کی رسی توڑ دیں تو دوسرے بت کی رسی گردن میں حمائل رہے گی. اس لیے اس مضمون کو تفصیل سے سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر حقیقت میں جماعت بتوں سے آزاد نہیں ہو سکتی, اور ہم نے تو تمام دنیا کو بتوں سے آزاد کرنا ہے. تو اس پہلو سے یہ خطبات کا سلسلہ جو جاری تھا اسے آگے بڑھانا تھا, مگر میں یہ چاہتا تھا کہ یورپ کی سفر سے واپس آ کر جب پھر پاکستان کے احمدی بھائی اور دوسرے مشرقی ممالک کے بھی احمدی بھائی بھی, اور اسی طرح افریقہ کے جاپان وغیرہ کے ان کے احمدی بھائی اس خطبے کو براہ راست سن سکیں, تو پھر وہیں سے اس مضمون کو دوبارہ شروع کیا جائے. چنانچہ تین خطبات جو سفر کے بیچ پیش آئے ان میں یہ مضمون بیان نہیں کیا گیا, بلکہ مقامی حالات کے پیش نظر جو نصائح ان جماعتوں کو ضروری تھیں انہیں پر اکتفا کیا گیا. عمومی طور پر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس دورے پر بھی میرے دل پر بہت ہی اچھا اثر پڑا ہے, جس طرح اس سے پہلے فرانس اور اسپین کے دورے سے واپس آ کر میں نے بیان کیا تھا کہ خدا کے فضل سے جماعتیں عموماً بیدار ہو رہی ہیں اور جوش اور ولولہ بڑھ رہا ہے, خدمت دین کے جذبے اٹھ رہے ہیں, اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ ہے. یہی صورتحال اس وقت جرمنی کی بھی ہے, سوئٹزرلینڈ کی بھی ہے, بیلجیم کی بھی ہے, ہالینڈ کی بھی ہے. جہاں جہاں میں گیا وہاں میں نے چہروں پر نئے ارادے اور نئی روشنیاں دیکھی ہیں, اور صاف نظر آتا ہے کہ جماعت یہ تہیا کیے ہوئے ہے اس دور کے سارے تقاضے پورے کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام زمین کے کناروں تک پہنچانے کے لیے جس حد تک ممکن ہے وہ ضرور زور لگائے گی. کچھ کمزور ہیں جو پیچھے بھی ہیں, ایک وقت میں ساری جماعت کی صحت ایک جیسی ہو نہیں سکتی, एक खानदान की सेहत भी एक जैसी नहीं हुआ करती। एक ही घर में बहुत सेहतमंद बच्चे भी हैं, बहुत कमजोर भी हैं, मजबूर भी हैं। बाहर जब अपने जोबन पर भी हो तब भी चमन में कुछ मुरझाए हुए पत्ते, कुछ मौत के किनारे की तरफ बढ़ते हुए फूल भी दिखाई देते हैं, सूखी हुई टहनियां भी, कांटे, खसोखा शाख। तो ये तो इज्तमाई जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन बहार और खिजा में फर्क यह है कि खिजा में शाद के तौर पर कहीं कहीं कुछ कौंपले फूटती दिखाई देती हैं, सब्जे से खिजा भी आरी नहीं हुआ करती। मगर बहार में सब्जे से महरूमी इस्तिस्ना है। तो जब भी जमात में रौनक हो तो उसमें उनके उस रौनक के पीछे कुछ मुरझाए हुए चेहरे भी दिखाई देते हैं, कुछ कमजोर भी दिखाई देते हैं, मगर यह भी दिखाई देता है कि उनके अंदर बेहतर होने का जज्बा पैदा हो चुका है, कोशिश कर रहे हैं, ये एहसास है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। बस जो खुतबात का सिलसिला है वो इस मजमून में हमारी बहुत मदद करेगा। और आज जो अल्लाह ताला के फजल से जमात पर बहार की हवाएं चल रही हैं, उनमें खुश्क होने वाले पौधों की भी इस्लाह का मुजीब बनेगा ये सिलसिला, और वो जिनसे जान निकल रही है उनमें दोबारा जिंदगी डालने का मुजीब बनेगा। इनफिरादी इस्लाह में मैं उम्मीद रखता हूं कि ये खुतबात का सिलसिला बहुत मुफीद साबित होगा और खुदा के फजल से हो भी रहा है। बाज ऐसे अहमदी थे जो दूर जा चुके थे, ये दूर हट रहे थे, पहले उनसे मेरा ताल्लुक भी रहा, बाद उनमें से ऐसे थे जिनसे मेरा ताल्लुक भी रहा, लेकिन फिर वो ताल्लुक भी रफ्ता उसी तरह मिटता रहा। इस खुतबात के सिलसिले के बाद वो दोबारा मिले हैं तो उनकी काया पलट चुकी थी, और एक ने मुझे रोते हुए गले लग के कहा कि मुझे अब होश आई है, अब पता लगा मैं कहां जा रहा था और कहां जा चुका था। तो मैं खुदा के फजल से पूरे जोर से पलट आया हूं और वादा करता हूं कि जिंदगी के आखिरी सांस तक इंशाल्लाह नेकियों को मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता रहूंगा। तो ये जो कैफियतें हैं ये बहुत ही उम्मीद अफजा हैं, और वो लोग जो चंद बुरे लोगों को देखकर मायूसी का शिकार हो जाते हैं उनको मैं समझाता हूं कि ये तरीक जिंदा कौमों के नहीं है। बुरों को देखकर मायूस होना हमारा काम नहीं, बुरों को देखकर उन पर रहम करना, उनको साथ लेकर चलना और उम्मीद बहार रखना, ये मोमिन का शेवा है। ये जो सिलसिला खुतबात का तस्वीरी शक्ल में दुनिया में दिखाया जा रहा है, ये इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ता चला जाएगा। इस जमन में मैं जमात जर्मनी का खसूसियत से जिक्र करना चाहता हूं। अगरचे माली बोझ में यूरोप के बहुत से ममालिक शामिल हैं और पाकिस्तान के भी कुछ अवाम ने या जमातों ने शिरकत की है, दूसरे ममालिक से भी इस मद में वादाजात भी और रकमें भी मौजूद हुई हैं, मगर सबसे ज्यादा नुमाया खिदमत जर्मनी की जमात को करने की तौफीक मिली है। और जहां तक यूरोप के ट्रांसमिशन का ताल्लुक है, उस सबके मुतल्लिक जमात जर्मनी ने अपने मजलिस शूरा में रेजोल्यूशन पास करके मुझे यकीन दिलाया कि जितना भी खर्च है तमाम कर्ज जमात जर्मनी अदा करेगी। तो यूरोप के चंदे से जो बच गया उसको हमने दुनिया में टेलीविजन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया, और क्योंकि मशरकी जमातों में अभी इतनी ताकत नहीं थी जितना बड़ा बोझ उठा सकती, तो इस लिहाज से जमात जर्मनी का तमाम दुनिया की जमातों पर एक एहसान है। अल्लाह ताला उन्हें जजाय खैर दे और दीगर हिस्से लेने वालों को भी जजाय खैर दे। इसी तरह जमात को मैं शहीद जसवाल साहेब और उनके भाइयों और उनके बहनोइयों और उनके भांजों भतीजों को भी दुआ में याद रखने की तलकीन करता हूं, क्योंकि इस खानदान ने इस मामले में बड़ी मेहनत की है और इनमें सबसे ज्यादा नुमाया हिस्सा वसीम जसवाल ने लिया है। उनको तो इस बात का जुनून है, इश्क हो गया है कि किसी तरह मैं तमाम दुनिया में टेलीविजन के जरिए खुतबात का निजाम और दीगर तबलीगी प्रोग्राम फैलाने का इंतजाम कर सकूं। और खुदा ने अकल दी है, सलीका दिया है, लगन दी है, बहुत मेहनत से उन्होंने खुदा के फजल से वो जगह तलाश की हैं, और फिर जुबान का भी मुहावरा अच्छा है, गुफ्तगू शरीक करना जानते हैं। तो रूस में भी, बाहर भी, दूसरे ममालिक के ऐसे इदारों से भी उन्होंने रابطे रखे और खुदा के फजल से ये काम दिन ब दिन खुश उसलूबी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी जिम्मन में एक ऐलान भी करना चाहता हूं, खुदा तआला के फजल से जमात के रवाबे थोड़ा सा रात अब इस तेजी से यूएसएसआर में यानी सबका रूसी रियासतों में बढ़ रहे हैं कि उससे हासिदों और दुश्मनों के कैंप में खलबली पड़ गई और यहां तक के पंजाब हुकूमत के वजीर आला जिनका कोई ताल्लुक नहीं ऐसे कामों से वो अपने मुल्क में इंसाफ कायम कर लें तो बहुत बड़ी चीज होगी। उनका यह हाल है कि एक कॉन्फ्रेंस में उलमा की कॉन्फ्रेंस में गए और उनको यह तलकीन की कि इस वक्त जरूरत है आलमी जहाज की, तुम्हें तुम जाओ और यूएसएसआर में जहां जहां जमात कोशिश कर रही है उनका पीछा करो, ताकुब करो और उनको नाकाम बना दो। हालांकि हमारे मुल्क में इतनी बदियां फैली हुई हैं कि अगर एक बदी के खिलाफ भी जहाद का ऐलान किया जाए तो सारे उलमा मिलकर भी उसको दूर नहीं कर सकते, लेकिन मिलकर दूर करना तो दरकिनार, उसकी तरफ तवज्जो ही कोई नहीं। बदियों से तो ऐसा मिलाप है जैसे घी शक्कर का मिलाप हुआ करता है, और अगर नफरत है तो खुदा के भेजे हुओं से नफरत है, उन लोगों से नफरत है जो खुदा के भेजे हुओं की मुनादी कर रहे हैं और इस्लाम का पैगाम और इस्लाम की खूबियों को दुनिया में फैला रहे हैं। तो ये मुकाबला तो चलेगा और बड़े जोर से चलेगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात शिकस्त के लिए नहीं पैदा की गई, इसने लाजमन फतह याद होना है। जिस मैदान में चाहे हमारा ताकुब कर लें, जिस मार्के में आए हमें आजमा के देख लें, इनके मुकद्दर में शिकस्त है क्योंकि ये नाकामी की मुनादी करने वाले हैं, ये नामुराद ताकतों की मुनादी करने वाले हैं, जिनके किस्मत में नाकामी लिखी गई है उन कुवतों की मुनादी करने वाले हैं। ये खुदा ताला के नुमाइंदों की मुनादी करने वालों से कैसे टक्कर ले सकते हैं? 100 साल से देख रहे हैं, 100 साल से आजमा चुके हैं, कभी हुआ है कि जमात अहमदिया की तरक्की को ये रोक सके? इससे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए सारी दुनिया में जब मैं हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात पर खुदा के फजलों का जिक्र करता हूं तो मैं जानता हूं कि कुछ दिलों में आग लग जाएगी और मुखालफाना कोशिशें शुरू हो जाएंगी। एक मौके पर मुझे किसी ने खत लिख के ये समझाने की कोशिश की कि आप नाम ले लेते हैं और ये पीछे पड़ जाते हैं सारे, और फिर सारी जमात की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए उन मुल्कों में कोशिश शुरू कर देते हैं। मेरे नफ्स में भी हल्की सी कमजोरी का ख्याल आया कि क्यों ना मख्फी रख कर बात की जाए, मख्फी रख के काम बढ़ाया जाए, लेकिन फिर मुझे कुरान करीम की तालीम की तरफ तवज्जो हुई। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है अम्मा बे नेमत रब्बे का फहद्दिस, खुदा जब तुम पर नेमत करता है तुम उसको बयान किया करो, हरगिज़ दुश्मन से नहीं डरना। और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात का नक्शा खींचते हुए उस हरियावल की तरह जो फूटती है जिसकी जुर्रा खबरगीरी करते हैं, फरमाया ये तो इसलिए फूट रही है, इसलिए भी फूट रही है कि दुश्मन गैज़ो गज़ब में मुब्तला हो जाए और कुछ पेश न जाए, उनकी आंखों के सामने बढ़ती रहे और नशोनुमा पाती रहे और मजबूत और तनाव और दरख्तों में तब्दील होना शुरू हो जाए। बस ये हमारा मुकद्दर है, इसलिए एहतियात के सारे तकाजे मैं एक तरफ फेंक देता हूं, जिसको खुदा ने जमानत दे दी हो कि तुम मेरी नियमतों की तशहीर करो और खूब बयान करो और दुश्मन से कोई डरने की जरूरत नहीं, इसलिए वो जो चाहे करें। एक मुल्क एक सूबे का क्या, सारी दुनिया के वज़रा और वज़रा आज़म और वज़रा आला जो भी नाम उनके हों वो मिलकर भी खुदा के नूर को नहीं बुझा सकते, कि तो वो चिराग है जो रोशन रहने के लिए बनाया गया है और रोशन करने के लिए बनाया गया है, इसलिए तमाम दुनिया में रोशनी फैलानी है, अंधेरों को खुदा ताला के फजल से मुनव्वर कर देना है। तो इसलिए जमात को ये इस मामले में घबराने की कोई जरूरत नहीं, खुदा के जो फजल हैं वो इंशाल्लाह बयान किए जाएंगे। और उन फजलों में से एक ये है कि यूएसएसआर की रियासतों में बड़ी तेजी से जमात के की तरफ मदद का हाथ फैलाने की तरफ तवज्जो हो रही है, और वो अखलाकी कदरों में भी हमसे मदद मांग रहे हैं कि हमारे मुल्क में आकर हमारी अखलाकी कदरों की तामीर में हमारी मदद करो, और इल्मी मैदानों में भी अब हमसे मदद मांग रहे हैं और उन्हें हम पर एतमाद है। अब तक खुदा के फल से इस तेजी से जमात अहमदिया के फलसफे को और जमात अहमदिया के किरदार को उन लोगों ने समझा है कि हैरत होती है कि बिल्कुल एक खुदा ताला से नाबलद रहते हुए एक लंबे अरसे तक खुदा से दूर रहने के बावजूद दिल की तख्तियां साफ हैं, सादा हैं और जहन इस हद तक रोशन है कि सच को झूठ से अलग करके देखने में उनको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। फौरन पता लग जाता है कि ये सच है ये झूठ है। बस मौलवी जाएं जितना मर्जी चाहें शोर मचाएं, उनको मालूम हो चुका है कि हमारे सच्चे सज्जन हमारे साथी कौन हैं, किन्होंने हमसे वफा करनी है, किन्होंने हमारी मदद करनी है। और जगह जगह से मुतालबे शुरू हो गए हैं कि जमात अहमदिया आए और इस मैदान में भी हमारी मदद करे, उस मैदान में भी मदद करे। अब ये जो निजाम है तफसीरी जुबान के जरिए खुतबात का दुनिया में फैलना, ये इस सिलसिले में बेहद उम्मीद और मुफीद है। इससे पहले हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते थे कि जमातों को चिट्ठी लिखते हैं कि इन इन आदमियों की जरूरत है, इन गवाहों की जरूरत है। उस इतला के बावजूद बहुत सी जमातें हैं जिनमें सुस्ती होती है। अगर उमरा वक्त पर उस नोटिस को आगे चलाने की भी कोशिश करें तो दरमियान में मुंतजिम कमजोर हो जाते हैं। खेतों के पानी का सहाल है, खाला कहीं यहां यहां टूट गया, कहीं कोई वहां टूट गया, कोई खेत में पहुंचकर पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो वसी निजाम जो है उनमें इस किस्म की कमजोरियां होती रहती हैं। और जिन लोगों तक पैगाम पहुंचना चाहिए बरह रास्त, उन तक बहुत कम पैगाम पहुंचता है। लेकिन अब जब मैं ये ऐलान करूंगा तो मशरिक़ व मगरिब में, अफ्रीका में भी हर जगह अहमदी बरह रास्त सुन रहे होंगे और जिनकी जरूरत है वो सुन रहे होंगे कि हमारी जरूरत है, और उनके दिल उसी वक्त लब्बैक कहेंगे। तो बजाय इसके कि महीनों याद दहानियां करवाई जाएं, इंतजार किए जाएं, एक ही खुदबे में एक ही सानिया में दुनिया के तीन चौथाई इलाकों में खुदा के फजल से ये जरूरत की इतला पहुंच जाएगी। और उसके नतीजे में जैसा कि मैं जानता हूं जमात हमेशा नेकी के कामों पर लब्बैक कहती है, इस काम पर भी वो लब्बैक कहेंगे। जो मुतालबे शुरू हुए हैं उनमें एक है इकोनॉमिक्स के माहरीन, क्योंकि इस वक्त वो सख्त इक्तसादी बहरान का शिकार हैं और बावजूद इसके कि मगरबी कौमें उनको इक्तसादी माहरीन मुहैया कर रही हैं, लेकिन उनको एतमाद नहीं है। वो जानते हैं कि यहां से धोखा ही मिलेगा, और जो मशवरे हैं उनमें हम ऐसी मुसीबतों में मुबतला हो जाएंगे कि फिर उनसे निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो आजाद सच्चे दयानतदार मुखलिस लोगों के तलबगार हैं, और उनकी नजर जमात अहमदिया पर उठी है और बाकायदा ऑफिशियली यानी बाकायदा रियासत के नुमाइंदों की तरफ से मुझे पैगाम मिला है कि आप हमें हमारे लिए इक्तसादी माहरीन मुहैया करें, बैंकिंग के माहरीन मुहैया करें। अब हिंदुस्तान में भी और बाहर भी मैं जानता हूं बहुत से बैंक के तजर्बा रखने वाले हैं जो बैंकों से निकाले गए इस वक्त बगैर किसी रोजगार के हैं। तो रोजगार की खातिर नहीं, क्योंकि वो लोग खुद मुश्किलात में मुबतला हैं, इसलिए बसर औकात के लिए सिर्फ रकम मुहैया कर पैसे देंगे और खुली तनख्वाहों के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। उनकी इक्तसादियात को अच्छा करना, बुलंदतर करना, सेहतमंद करना, इसमें जो अहमदी हिस्सा लेंगे अल्लाह ताला के फजल के साथ उनकी जजा इन कौमों से नहीं मिलेगी बल्कि अल्लाह से मिलेगी, क्योंकि हम ये काम अल्लाह की खातिर करते हैं। इसलिए उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं, थोड़े पैसे भी मिल जाएं और एक अजीम शान खिदमत की तौफीक मिल जाए तो ये अपनी जात में एक साहेब दिल के लिए जजा है। जो साहेब दिल लोग हैं जिनका दिल खुदा की तरफ मायल हो, उन दिलों की बात कर रहा हूं, उनके लिए ये बड़ी जजा हुआ करती है कि हमें नेकी की तौफीक मिल गई। और जहां तक रोजीने का ताल्लुक है, उनके बीवी बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, मकान का इंतजाम होगा, रोजमर्रा की खुराक मुहैया होगी और शरीफाना साफ खोशी के साथ गुजारा चल सकेगा। और अगर कहीं दिक्कत हो तो जमात को लिखें, हम इंशाल्लाह ताला उनकी जायज जरूरतें पूरी करने की कोशिश करेंगे। कोई हतमी वादा नहीं, लेकिन ये वादा जरूर है कि तौफीक के मुताबिक कोशिश करेंगे। और फिर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि सिलसिला काफी फैलेगा। इकोनॉमिक्स बैंकिंग फाइनेंस, इकोनॉमिक्स में तो बैंकिंग और फाइनेंस भी आ जाता है लेकिन इकोनॉमिक्स में उन्होंने अलग लिखा हुआ है, बैंकिंग और फाइनेंस और अकाउंटिंग खसूसियत के साथ इनका जिक्र किया है। इसी तरह मार्केटिंग, बहुत सारे उनके पैदावार हैं जो जाया जा रही हैं और मुल्की तौर पर उनकी कोई भी कीमत नहीं। रियासतों के आपस के ताल्लुकात ऐसे हैं कि एक रियासत दूसरे को उसकी कीमत की उसकी वाजिबी कीमत अदा नहीं करती और उनके पास हैं भी नहीं पैसे। इसलिए आजकल तो जहां तक मैंने देखा है बार्टर सिस्टम पर काम चल रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी अच्छी अच्छे इम्कानात रखती हैं, रोशन इम्कानात रखती हैं, उन्हें दुनिया की बाहर की मार्केट में भेजा जाए, इसलिए उनको मार्केटिंग के माहिरीन की भी जरूरत है, कानून दानों की जरूरत है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के माहिरीन की जरूरत है। ये बड़े बड़े काम हैं जिसकी जिनकी उनको जरूरत है। दुनिया में जहां जहां भी अहमदी माहिरीन इन बातों को सुन रहे हैं और वो अपना वक्त पेश कर सकते हैं, उनको चाहिए कि बिला ताखीर अपने अपने उमरा की वसात से, अगर वो पाकिस्तान में हैं तो वहां तहरीक जदीद में ये दरख्वास्त दें, नुसरत जहां में वहां इंतजाम किया गया है, नुसरत जहां के जो सब सेक्रेटरी वहां काम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह वो मुझे वहां इकट्ठी करके अपने तबसरे के साथ भिजवा देंगे। और जहां बाकी ममालिक जहां तक बाकी ममालिक का ताल्लुक है उमरा को भिजवाइए और उमरा अपनी तस्दीक के साथ या अपने मशवरे के साथ वो चिट्ठियां मुझे बरह रास्त भिजवा दें ताकि जो काम महीनों में होना था वो एक हफ्ते दस दिन के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाए। और फिर मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि जाएं और अल्लाह की हिफाजत में खुदा की पनाह में खुदा की खातिर अपने आप को अपने वजूद को अपने खानदानों को इन नेक कामों में झोंक दें। और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पेशगोई हमारी आंखों के सामने पूरी हो कि खुदा ने आपसे वादा फरमाया कि आपकी जमात रूस के इलाकों में रेत के जर्रों की तरह फैल जाएगी। तो ये सिलसिले खुदा ही के थे और उन्हीं सिलसिलों की पैरवी में अब ये नए सिलसिले जारी हुए हैं। एक तरफ वादे थे, दूसरी तरफ तलब पैदा हो गई है और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह इसके नतीजे में जो जमात का पैगाम दुनिया में पहुंचेगा खुसूसन यूएसएसआर के इलाके में उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। ये खुदा की तकदीरें हैं, कोई तदबीर इंसान की खुदा की तकदीर को बदल नहीं सकती। एक दो बहुत ऊंचे तबके के माहरीन की जरूरत है जो मार्केट इकोनॉमी में आला तालीम रखते हों और आला तजर्बा रखते हों और इसी तरह फॉरेन रिलेशंस का भी उनको तजर्बा हो, क्योंकि इस किस्म के भी माहरीन की जरूरत है जो बहुत ऊंची सतह पर बाज हुकूमतों की खिदमत करेंगे। तो जो लोग रिटायर हो चुके हैं और इन दोनों बातों के वाकिफ हैं उनको चाहिए वो भी फौरी तौर पर तवज्जो करें। अब मैं बकिया वक्त में इस मजमून को शुरू करता हूं फिर जो चंद हफ्ते पहले शुरू किया गया था। और ये मजमून खयानत से ताल्लुक रखता है। इस मजमून को इख्तियार करने की वजह यह है कि हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ के बाद सबसे ज्यादा खौफनाक और हौलनाक चीज जिसका जिक्र फरमाया है वो खयानत है, जो मोमिन की ईमानी हालत को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख देती है। और इसके मुतालिक आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जगह ऐसी उमदगी से निसाए फरमाई हैं कि जिनसे इंसान की अकल दंग रह जाती है कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानी फितरत पर कितनी गहरी नजर थी और खुदा के कलाम को किस तरह इंसानी फितरत के बारीक गोशों पर चस्पा करके हम तक उनके ताल्लुकात वाजे फरमाते थे और छोटी छोटी मिसालों में बहुत गहरे पैगाम दे दिया करते थे। हजरत अकदस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मोमिन में झूठ और खयानत के सिवा दूसरी बुराइयां हो सकती हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है, बहुत से ऐसे गुनाह कबीरा हैं जिनके ख्याल से इंसान डरता है, समझता है बहुत ही भयानक बीमारी है जो खत्म कर देगी इंसान को। लेकिन आहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन दो बुनियादी बीमारियों का जिक्र फरमाया है जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, एक झूठ है और एक खयानत, और फरमाया मोमिन की जात में ये इकट्ठे नहीं हो सकते। इस पहलू से सबसे पहले तो जमात को अपना इंफिरादी तौर पर जायजा लेना चाहिए कि क्या वो झूठ और खयानत से कुल्लियतन पाक है। अगर ये जायजा ले तो इंसान लरज उठे, क्योंकि बड़े बड़े नेक लोग भी झूठ से और खयानत से कुल्लियतन पाक नहीं होते। झूठ की मुख्तलिफ सतें हैं, बात सतों पर आकर झूठ फिर भी उनके अंदर परवरिश पा रहा होता है। वो इतना खफीफ जरूर हो जाता है कि बीमारी मोहलिक है लेकिन इस मिकदार में मोहलिक नहीं होती जिस मिकदार में वो पाई जाती है। जरूरी नहीं होता कि हर मोहलिक बीमारी हर इंसान को फौरन खत्म कर दे। बाद मौलिक बीमारियां हैं जो अभी इतनी मामूली मकदार में पाई जाती हैं कि जिस्म पर गलबा पाने की ताकत नहीं रखती, लेकिन अगर उन्हें छोड़ दिया जाए अपने हाल पर तो रफ्ता रफ्ता हलाक कर देते हैं। तो मोमिनों की भी मुख्तलिफ किस्में हैं। बाद मोमिन वो हैं जिनमें बीमारियों को जड़ों से उखेर फेंकने का अमल जारी हो चुका होता है, उन पर इस हदीस का इतलाक नहीं होगा उन मानों में, क्योंकि वो इस बात का शऊर हासिल कर लेते हैं कि हमने झूठ भी है खयानत भी है, और उसके खिलाफ जहाद शुरू कर देते हैं। और जहाद की हालत में जो मारा जाए उसे आप झूठा और खायन, इस जहाद में जो मारा जाएगा उसे झूठा और खायन नहीं कह सकते, इसलिए वो मोमिन ही शुमार होगा। लेकिन जहाद नेक नीयत से करे और पूरी ताकत से करे तो फिर मैं उम्मीद रखता हूं कि इस हदीस का इतलाक उन मानों में उस पर नहीं होगा कि गोया वो कुल्लियतन हलाक और खुदा की बारगाह से रद्द हो गया है। दूसरे वो लोग हैं जो ईमान का दावा तो करते हैं लेकिन उनके अंदर झूठ परवरिश पा रहा है, खयानत में वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और कोई आर नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है, नफ्से लवामा मौजूद ही नहीं है। ऐसे लोगों को वहम है कि वो मोमिन है, और यह हदीस वाज़ेह तौर पर खुलम खुला ऐलान कर रही है कि जिस शख्स में ये दो चीजें इकट्ठी हो जाएं, झूठ और खयानत, वो मोमिन नहीं कहला सकता। हजार दूसरी बदियां हों तो फिर भी मोमिन कहलाएगा, लेकिन झूठ और खयानत हो तो ईमान की जड़ें खुल जाती हैं, कुछ भी ईमान का बाकी नहीं रहता। खयानत झूठ से मुतल्लिक मैं पहले कुछ बयान कर चुका हूं, खयानत से मुतल्लिक मैं हजरत अब्दुल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पेश करता हूं। आपने फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूं भूख नंग से, जिसके साथ जिसका ओढ़ना बिछाना बहुत ही बुरा है, और मैं पनाह मांगता हूं खयानत से, क्योंकि ये बितानत पैदा करती है और बहुत ही बुरी बितानत है, यानी अंदरूनी बीमारी। अब ये दो अलग अलग बातें हैं। इंसान ताज्जुब में मुबतला होता है बज़ाहिर कि इन दोनों में क्या जोड़ है, मगर हजरत अब्दुल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर गौर करने के लिए ठहरना पड़ता है, मज़मून में डूबना पड़ता है, और गहरी तलाश करके जिस तरह गोताखोर समंदर की तह से मोती निकालता है, इस तरह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में डूबकर आपके मतालब को हासिल करना पड़ता है। ज़ाहिरी नसीहत अपनी जगह असर दिखा देती है, जिस तरह समंदर की सतह का भी एक असर है, लेकिन उसकी गहराई में और भी चीजें हैं जो बहुत ही मुफीद हैं। तो इस हदीस को पढ़कर एक मोमिन के दिल पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, ये दो बातें हैं जिनसे पनाह मांगनी चाहिए। लेकिन जब आप इसकी हकीकत को समझेंगे और इन दोनों का ताल्लुक समझेंगे, तो एक तरफ हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे का इरफान बढ़ेगा, दूसरी तरफ इन चीजों से निजात पाने के लिए पहले से बढ़कर इरादा कवी होगा और इंसान दुआ के जरिए इनसे निजात पाने की कोशिश करेगा। भूख को जाहिरी तौर पर फरमाया कि बहुत ही बुरा ओढ़ना और बिछोना है। कुरान करीम ने भी एक जगह लिबासुल जू का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। इस हदीस की बुनियाद उसी आयत करीमा में है कि खुदा तआला किसी कौम को जब भूख का लिबास पहना देता है तो बहुत ही बुरी हालत होती है। भूख का लिबास क्यों फरमाया गया? बात यह है कि भूख एक ऐसी बला है कि जिस पर इंसान हर दूसरी जरूरत को कुर्बान करता चला जाता है, और भूखे लोगों के घरों में पहले जेवर बचते हैं, बेचते हैं, फिर बर्तन तक बिकने लग जाते हैं, फिर कपड़े तक बेचने की बारी आ जाती है, और भूखे लोगों को अपने कपड़ों को संभालने की होश ही नहीं होती, ना ताकत होती है कि उनको वो कपड़ों की तरफ तवज्जो करें और उनकी जरूरतें पूरी कर सकें। तो कुरान करीम ने जो लिबासुल जू फरमाया, वाकईतन भूख लिबास बन जाती है, एक ऐसी फलाकत का लिबास जो देखने में दिखाई देता है। भूखे अफ्रीका को देखें, उनकी तस्वीरें देखें, तब आपको समझ जाएगी कि भूख का लिबास से क्या ताल्लुक है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि भूख जो तुम्हारे जाहिर का हाल करती है, खयानत वही तुम्हारे अंदरूने का हाल कर देती है। खयानत जिसको लत पड़ जाए वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है जिससे दूसरी तमाम हसनात खाई जाती हैं, वह एक एक करके उसकी नेकियां बिक रही हैं, और खयानत की भूख मिटाने के लिए तमाम खूबियां उसकी हलाक तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जिसमें खयानत आ जाए उसमें सारी दूसरी बुराइयां। मौलाद यह है कि रफ्ता रफ्ता खयानत इंसानी अंदरूने पर ऐसा कब्जा कर लेती है कि उसकी तमाम सलाहियतें खत्म कर देती है, उसमें तमाम बुराइयां पैदा हो जाती हैं, तमाम नेकियां उसकी हाथ से निकल जाती हैं। तो ये वजह है जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ के बाद खयानत को सबसे ज्यादा मोहलिक बीमारी करार दिया है, और झूठ और खयानत के मुताबिक फरमाया कि अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो फिर मोमिन में ईमान, मोमिन कहला ही नहीं सकता, उसका ईमान ही बाकी नहीं रहता। कुरान करीम ने खयानत के मुख्तलिफ पहलू बयान फरमाए हैं, और कोई पहलू ऐसा नहीं है खयानत का जिस पर रोशनी न डाली हो। अजीब किताब है कि हर मजमून के जाहिर को भी पेश करती है, बातिन को भी पेश करती है, बड़ी चीजों को भी बयान करती है, छोटी बारीक दर बारीक चीजों को भी बयान करती है, और कोई इल्म का ऐसा मजमून नहीं जिसकी इंसान को जरूरत हो उस पर कुरान करीम ने तफसील से गहरी रोशनी न डाली हो। यानी वो इल्म जो इंसान की रूह के लिए, निजात के लिए जरूरी है। जहां तक बदनी उलूम का ताल्लुक है उनके भी बड़े गहरे इशारे मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त इस ये गुफ्तगू इस मौजू पर नहीं हो रही, इसलिए मैं वापस पहले मज़मून की तरफ आते हुए पुरानी आयात की रोशनी में आपको खयानत की बात किस्मों से आगाह करता हूं, और उन पर आप नजर रखें और फिर देखें कि आप में, आपके घर वालों में, आपके बच्चों में इन किस्मों में से कौन सी खयानत पाई जाती है, और अगर पाई जाती है तो उसका सर तोड़े बगैर आप तबत्तुल अल्लाह अख्तियार नहीं कर सकते। जो खयानत पाई जाती है उसकी रस्सी आपकी गर्दन पर है। चुनांचे कुरान करीम ने इस मजमून को यूं बयान फरमाया है कि क़यामत के दिन तौक होगा खाइनों की गर्दन में। वो दरअसल यही रस्सी है जो दुनिया में इंसान को नेकियों से बांध रखती है और बदियों से बांधे रखती है, और जिन तौकों का जिक्र है कुरान करीम में कि जिनसे अंबिया आजाद किया करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौमों को आजाद किया, और वो उनमें खयानत का तौक एक बहुत ही खतरनाक तौक है। कुरान करीम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह वर्रसूला व तखूनू अमानातकुम व अंतुम तालमून, कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की और रसूल की खयानत ना करो, व तखूनू अमानातकुम व अंतुम तालमून, और तुम अपनी अमानतों की खयानत करते हो और जानते बूझते हुए करते हो। इससे मुराद यह है कि वो लोग जो रोजमर्रा के इंसानी मामलात में अपने मुआशरे में खयानत करने से ना झिझकते हों, वही लोग हैं जो लाजमन फिर रसूल और खुदा की खयानत भी करते हैं। इंसान से खयानत करना इंसान के दायरे तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ऐसा खाइन खुदा और रसूल की खयानत करने वाला बन जाया करता है। इसलिए फरमाया, तुम खुदा और रसूल की खयानत का शायद तुम इलम ना हो, क्योंकि बाद खयानतें इंसान अल्लाह रसूल की ऐसे करता है जिसका उसको इलम नहीं हुआ करता, लेकिन जो इंसान की करता है वो जानता है। तो जो जानता है उससे इशारा किया उस तरफ जिसको वो नहीं जानता, और बताया कि तुम्हें अगर इल्म ना भी हो कि तुम अल्लाह और रसूल के खाइन हो, याद रखना कि अगर तुम बंदों के खाइन हो तो तुम खुदा और रसूल के भी खाइन हो, चाहे तुम्हें इल्म हो या ना हो। बस एक यकीनी इल्म दूसरे मशकूक इल्म की तरफ इशारा कर रहा है या हाजिर गायब की तरफ इशारा कर रहा है। फरमाया, यहां ऐसे हो तो वहां भी ऐसे होगे, हम तुम्हें बता रहे हैं। ये ऐसे ही मज़मून है जैसे फरमाया कि जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। तो खाइन आदमी तकसीम नहीं किया करता। ऐसे मौलवी जो माल खा जाते हैं उन मसाजिद के या दूसरे चंदे जो उनको दिए जाते हैं, वो अपनी तरफ से बड़ी दीन की खिदमत कर रहे होते हैं और कहते हैं हां इंसानों का तो कोई हर्ज नहीं, खुदा के खाइन नहीं है, उनके लिए इसमें बड़ी नसीहत है। अगर वो दुनिया में खयानतें करते हैं तो खुदा कहता है कि उन खयानतों का तुम्हें इल्म है, और हमें यह इल्म है कि तुम खुदा और रसूल के भी खाइन हो, क्योंकि नामुमकिन है कि इंसान बंदे का खाइन हो और खुदा और रसूल का खाइन ना हो। फिर कुरान करीम फरमाता है, इन्ना अंजलना इलैकल किताबा बिल हक़ लितहकुम बैन अन्नास बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिल खाइनीन खसीमा, कि हमने तुझे तेरी तरफ ये किताब हक के साथ उतारी है ताकि तू लोगों के दरमियान फैसले करे और लोगों को हिकमत की बातें बताए। हुक्म बैन नास में हक के इंसाफ के साथ फैसले करना भी दाखिल है, और हुक्म में हिकमत के माने भी पाए जाते हैं। बेमा अराक अल्लाह हो, उस रोशनी के साथ ये फैसले करे और हिकमत की बातें बयान फरमाए कि जो खुदा ने तुझे दी है, उस नूर से ये फैसले करे जो खुदा ने तुझे अता फरमाया है। बेमा अराक अल्लाह हो वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, सबके लिए दुआएं बेशक कर, मगर खाइनीन के लिए हमारे हजूर झगड़ा न करना। खसीम का लफ्ज कुरान करीम में दूसरी जगह भी इन मानों में इस्तेमाल हुआ है, और खुदा तआला ने अंबिया को मना फरमाया है और इसी तरह दीगर मोमिनों को भी कि खाइन की हिमायत में कुछ नहीं कहना। और ये लफ्ज सिर्फ खुदा ही से ये नसीहत सिर्फ खुदा ही से ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि दुनिया से भी ताल्लुक रखती है। जहां भी एक खाइन का मामला दरपेश हो उसकी हमायत में कुछ नहीं कहना चाहिए। बाज ऐसे लोगों की सिफारिश करते हैं कि उनसे गलती होगी, फलां गलती हो गई, उन्हें माफ कर दिया जाए, और खाइनीन की भी कर देते हैं। मसलन बाज ऐसे वाकयात हुए, बहुत कम होते हैं अल्लाह के फजल से शाद के तौर पर, मगर होते हैं कि जमाती अमवाल में किसी ने खुद गुट की है तो चिट्ठियां लिखते हैं कि बहुत अल्लाह रऊफुर रहीम है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मेहरबान थे, कुरान ने उनको रऊफुर रहीम करार दिया, अल्लाह ताला सारे गुनाह बख्श देता है। तो आप जब खुदा की रहमत और मगफरत के गुण गाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमत और मगफरत के गुण गाते हैं, तो क्यों ऐसे लोगों से सरफ नजर नहीं करते और उनको माफ नहीं फरमाते? तो उनको पता नहीं कि अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है कि खाइन की ना रियायत करनी है ना उसके साथ उसकी वकालत करनी है। तो जमात को इस मजमून को समझना चाहिए, दुनिया के मामलात में भी खाइन की कोई हिमायत नहीं करनी चाहिए, और अंबिया को जब फरमाया जाता है ला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, तो लफ्ज खसम जो है ये सिर्फ बुराई के मानों में नहीं होता कि झगड़ा, बल्कि शिद्दत से किसी की वकालत करना, दिल डालकर जान डालकर किसी की वकालत करना और सिफारिश करना, इसको भी खसूमत कहते हैं। तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये नसीहत फरमाई गई कि तुम खायनीन के लिए हमारे पास कोई दुआ और सिफारिश न करना। वस्तग़फिरिल्लाह इन्नल्लाह काना गफूरुर रहीमा, अल्लाह से बख्शिश मांगो और खुदा बहुत गफूर और रहीम है, बहुत मगफरत करने वाला और रहम करने वाला है। इस आयत ने वो सारे वहम दूर कर दिए कि अगर इंसान खायनों से मगफरत नहीं करेगा तो खुदा की मगफरत से महरूम रह जाएगा। जो लोगों से रहम का सलूक नहीं करता, खुदा भी उससे रहम का सलूक नहीं करता। यही वहमा है जिसने बाल लोगों को खायनों की सिफारिश करने पर मजबूर किया। तो कुरान करीम का एजाज देखें कि जहां एक दफा खायनों से नरमी ना करने का हुक्म दिया, यहां तक कि उनकी सिफारिश से भी रोक दिया, उनके लिए दुआ से रोक दिया, वहां इस बात का यकीन दिलाया कि खुदा की खातिर तुम ऐसा करोगे खुदा की मगफरत से महरूम नहीं रहोगे। अल्लाह से मगफरत तलब करो, बहुत ही गफूर रहीम है। मतलब यह है कि अगर खुदा ने किसी खायन में कोई ऐसी नेकी देखी कि उसकी मगफरत का फैसला करे, यह भी एक मतलब है, तो वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन तुम्हें बीच में दखल देने की जरूरत नहीं। तो दो पैगाम इकट्ठे मिल गए, एक तरफ खायन के लिए दुआ ना करने वाले को यह पैगाम है कि इसके नतीजे में खुदा तुमसे उसी तरह मकसद का सलूक करता रहेगा जैसे पहले करता था, कि तुम खुदा की खातिर रुके हो, और दूसरी तरफ यह भी ऐलान है कि खुदा को अपनी बख्शिश और मगफरत के सलूक के लिए तुम्हारी सिफारिश, तुम्हारी दुआओं और इल्तिजाओं की जरूरत नहीं है। खायन का मामला मख्फी है, और ये वो मज़मून है जो पहले हदीस में बयान हो चुका है कि खयानत की बीमारी मख्फी बीमारी है और इसकी कोनों तक इंसान पहुंच नहीं सकता। कुछ जाहिरी खयानतें उसको दिखाई देती हैं, ये नहीं जानता कि अंदर क्या क्या खयानतें थी और जिन्हें कहां कहां पहुंची हुई हैं, और इस मजमून से वाकिफ नहीं कि जो थोड़ी सी खयानतें जाहिर की उसको दिखाई दी हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि यही शख्स खुदा और रसूल का भी खायन है, तो किन मानों में है बीमारी अंदर कहां कहां फैली हुई है हमें कुछ इल्म नहीं, मगर अल्लाह बेहतर जानता है। और साथ खुदा ने यह भी तसल्ली दी कि अगर किसी को माफ फरमाना चाहे अल्लाह, तो बहुत गफूर रहीम है, तुम्हें जरूरत नहीं है। ऐसा खायन जिसकी बाल कमजोरियों पर भी नजर है खुदा की, उसकी बाल खूबियों पर भी तो नजर होगी, और वो जानता है कि किस हद तक बीमारी फैली है, किस हद तक सेहत के इम्कानात हैं। तो अल्लाह पर इस मामले को छोड़ो, बहुत गफूर रहीम है, जिससे चाहेगा उसने सुलूक फरमाएगा। वला तुजादिल अनिल्लज़ीन यख्तानून अनफुसहुम, पहले मुखासमत का जिक्र था, खुसूमत का, अब मुजादला का जिक्र फरमाया है। फरमाया है कि उनके लिए किसी किस्म की कोशिश और जहाद ना करो। यख्तान उन लोगों के लिए जो अपने नफ्स की बद्यंती करते हैं, अपने नफ्स से खयानत करते हैं। यख्तानून अनफुसहुम में अनफुसहुम के माने भी ऐसे लोग और उनके अहदों को निभाते नहीं हैं, उनकी रियायत नहीं करते और उनकी अमानतों का हक अदा नहीं करते, उन लोगों के मुतल्लिक फरमाया है कि तुम्हें उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, दुआ के जरिए या किसी और जरिए से उनके हक में कोई लड़ाई ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खवान नसीमा, और याद रखो कि अल्लाह ताला खायन गुनाहगार से मोहब्बत नहीं करता। असीमा का खाली इस्तेमाल नहीं फरमाया, यहां फरमाया है खवानन असीमा, बहुत ज्यादा खायन, ऐसा खायन जो हद से बढ़ चुका हो और फिर गुनाहगार भी साथ हर किस्म का हो, वो तो होना ही होना। ये जो मुहावरा है अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, नफरत नहीं करता, चलो नफरत भी नहीं करता होगा, मोहब्बत ना करने का अरबी का मुहावरा है, सख्त नफरत करता है, किसी कीमत पर उनको बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह का नाम मोहब्बत करना एक बड़ा गहरा बयान है, इसको आपको खूब गौर से समझना चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि अगर खुदा अपने बंदों की कमजोरियों पर निगाह रखता तो किसी से उसका ताल्लुक न रहता। लेकिन अपने बंदों की किसी ना किसी खूबी पर नजर रखकर वो उनसे ताल्लुक रखता है। बस जिस शख्स के मुतालिक ये आ जाए कि वो खुदा उससे मोहब्बत नहीं रखता, इसका मतलब यह है कि उसकी उसके अंदर कोई खूबी नहीं पाता, कोई ताल्लुक के लिए मुश्तरका जमीन नजर नहीं आती जिस पर वो ताल्लुक कायम हो सके। बस हजरत अब्दुल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी गहरी इरफान की बातें हमें समझाई हैं कि एक मजमून दूसरे मजमून को समझने में मदद करता है। तो जब कुरान करीम में अल्लाह ताला ये फरमाए मैं फलां से मोहब्बत नहीं करता फलां से मोहब्बत नहीं करता, तो मुराद ये है कि मैं उसकी खूबियों से आरी देखता हूं, चाहता भी हूं तो उससे प्यार नहीं रख सकता। तो वही मजमून है कि जिस तरह भूखे के घर के सामान बिक जाते हैं, उसके तन बदन के कपड़े बिक जाते हैं और भूख उसका लिबास बन जाती है, इस तरह खयानत अंदरूनी तौर पर इंसान का हाल करती है, कोई रौनक अंदर बाकी नहीं रहने देती, सारी खूबियां बर्बाद हो जाती हैं। यह खयानत के आखिरी मकाम का जिक्र है। चुनाचे कुरान करीम ने यहां इस मौके पर खायन नहीं फरमाया, इस आयत में दूसरी आयतों में खायन का जिक्र है, यहां फरमाता है ला युहिब्बु मन काना खवानन खवानन अथीमा। हद से बड़े हुए खायन जो खयानत में अपने आखिरी मकाम तक पहुंच जाते हैं, उनमें फिर खुदा कोई खूबी नहीं देखता, कोई ऐसी बात नहीं देखता कि खुदा उनसे ताल्लुक कायम रख सके। यस्तखफून मिन अन्नास वला यस्तखफून मिन अल्लाह। ये लोगों से छुपते फिरते हैं लेकिन अल्लाह से छुप नहीं सकते, क्योंकि आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बातिन की बीमारी इसीलिए करार दिया है। बातिन की बीमारी कई रंग में है, एक ये भी बात रंग है कि खायन दुनिया की नजर से छुपता है, अपनी बात को छुपाता है, और फरमाया छुपते होंगे मगर अल्लाह की नजर से नहीं छुप सकते। वह मा हम इज युबैयतूना, वो उनके साथ होता है जब वो ऐसी रात गुजारते हैं जिसमें ऐसी बातें करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं। वकान अल्लाह बेमा यामलूना मुहीता, और अल्लाह खूब अच्छी तरह घेरे हुए है उन बातों को जो वो करते हैं, यानी चारों तरफ से वो खुदा के घेरे में है, उसे निकल नहीं सकते, उसे बच नहीं सकते। तो खयानत का मर्ज बहुत ही गहरा और खतरनाक मर्ज है। ये अमूमी मजमून है जो बयान हुआ, इसके बाद तफसीली मजमून भी कुरान करीम में बयान होता है कि किन किन मौकों पर किन महल किस किस महल पर इंसान खयानत करता है और फिर बिलाखिर खवान किस किस शक्ल में बनता है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आइंदा जुमे में, अब चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, आइंदा जुमे में इस मजमून को फिर आगे बढ़ाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बाकी पाकिस्तान और जापान और इंडोनेशिया और अफ्रीका के ममालिक और हिंदुस्तान के ममालिक, हिंदुस्तान के मुल्क वगैरह वगैरह में जो अहमदी अब दोबारा उस खुतबे को बरहरास सुन और देख रहे हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से भी और तमाम जमात हिंदुस्तान की तरफ से भी नहायत मोहब्बत भरा सलाम पहुंचाता हूं। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان वही काय दिल कुर्बा वही अनहान फाशा वल मुनकर वल बावी यह रोकुम लाल लकुम सदक करून उल्कुल्ला यद कुरकुम वदू यस्तजिब लकुम वरद कुल्ला अकबर।